बाजा कुछ ललन टॉप सुनते हैं।
कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। किताबें मेरी दोस्त हैं, कभी फंसा देती हैं, कभी हंसा देती हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये किताबों की दुनिया ही मेरी दुनिया है, लेकिन इतना खुदगर्ज भी नहीं कि अपनी ये खुशी आपसे ना बांटूं। इन किताबों को, इनकी खुशबू को, इनके लेखकों को आप तक लेकर आता हूँ मैं किताब वाला में। सुनिए किताब वाला मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ सिर्फ बाजा पर।
एक कटोरा है, होली ग्रेल से समझ लीजिए, हमारे गर्भ सा। उसकी एक खासियत है, वो मुगल बादशाह का दिया कटोरा है, और अगर कभी उसमें कुछ भी परोसा जाए जिसमें जहर हो तो वो टूट जाएगा। लेकिन उसके इर्द गिर्द धूल है, और धूल रिक्शे के पहिए से उड़ रही है। उसके ऊपर एक उस्ताद बैठे हैं, उस्ताद के पास एक पाउडर का डब्बा है, डब्बे में बहुत सारी फुटकर राशि है, क्योंकि उनको किसी बड़े अलंकृत जगह पर जाकर अपने केश का कर्तन नहीं करवाना है, उन्हें किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना है। वो बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं तो शहनाई की आवाज़ आती है। हालांकि पीढ़ियां बीत रही हैं और अब ऐसा बयान दर्ज कराने वाले कम हैं जो कह सकें कि हमने उस्ताद को शहनाई बजाते देखा है। देखने वाले तो ये भी कहेंगे कि किसी ने किसी बुजुर्ग को किसी प्रधानमंत्री का प्रस्तावक होते देखा है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जब पूछता है कि स्वास्थ्य कैसा है तो जवाब मिलता है प्रभु की कृपा है। और कृपा कुछ ऐसी है कि कोई और बुजुर्ग परदेश में जाकर बस गया, लेकिन जब अपने हिस्से की आत्मकथा लिख रहा है तो याद उसको कर रहा है जो देश में छूट गया है, जिसके भीतर एक मध्यवर्गीय औदात्य है और है जिसका खौफ। खौफ ऐसा कि वो जब गली में चहलकदमी करता है तो धन्य भाग सेवा का अवसर गाने वाले भी कहीं किसी किनारे छिप जाते हैं। छिप कर निकलते हैं तो नजर उठती है और देखते हैं कि हम कबीर की जगह हैं। कौन है कबीर? कहानियों का कबीर, सर्वानंद के बैल को जिसकी बेटी सीख देती है वो कबीर, या जिसके नाम पर सियासत होती है वो कबीर। कितने सिरे हैं, कितनी नदियां हैं, कितने मंजर हैं जो यूं बदल रहे हैं जैसे किसी बेहद शरारती कारोबारी ने बायोस्कोप में किसी जैविक ईंधन से चलने वाली मोटर लगा दी हो, लेकिन आखिरी में ये एक बच्चे का दुदमुहा सपना है जो टुक रूट कर दोपहर में सोया है, जिसके चेहरे से धूप का ताप नहीं गया है और जिस बच्चे की उम्र सिर्फ कुछ हजार बरस है। ये बनारस की कहानी है जिसमें किसी भी सिरे से, किसी भी भाव के साथ, किसी भी शब्द और गंध के साथ कभी भी दाखिल हुआ जा सकता है, जीवन के साथ भी और जीवन का जो अंत है मृत्यु उसके बाद भी, क्योंकि अगर जीवन का अंत मृत्यु है तो कहीं मृत्यु का अंत भी होगा। किताब वाला के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात बनारस की होगी और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे बनारस पर ये कमाल की किताब लिखने वाले, और शहर सिर्फ मानचित्र पर अंकित एक जगह भर नहीं होता, शहर कुछ अक्षांश और देशांतरों का प्रकटीकरण नहीं होता, शहर कुछ इमारतें नहीं होती उन इमारतों और उनमें बसने वालों का जो कि जीवित या कि मृत या पत्थर हो गए हैं, या फिर जिनके बारे में और कहीं कहीं किन्हीं वृद्धावलियों भजन श्लोकों में लिखा गया, उतना भर नहीं होता। शहर जीता जागता है अपने लोगों में, उनके बनैलेपन में, और ऐसे शहर बनारस की गाथा। ऐसे ही एक बनैले भटके अपने हिस्से की सुस्ती, अहंकार और विनम्रता को समेटे व्योमेश शुक्ल ने की है किताब जिसका नाम है आग और पानी, बनारस पर एकाग्र गद्य। इसमें वो सब कुछ है जो बनारस से आपका पहला परिचय करवा सकता है। उस्तादों के साथ की बातचीत है, किस्से हैं, किस्सा कि कोई जाता है एक सेठ के दरवाजे पर सेठ नहीं मिलता, पुराना जूता पहने गाय को अग्रासन देता या सानी करता हुआ बुजुर्ग मिलता है, और ये लखपति जब उस पर लांछन करता है, कटाक्ष करता है, तो हुंडियां ऐसे खुलती हैं कि उसका कारोबार सब मिट्टी हो जाता है। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिनके बारे में मुझे पता चला इस किताब से। इस किताब को रुख प्रकाशन ने छापा है, रुख पेपरबैक्स ने। कीमत सिर्फ 220 रुपए है। जरूर पढ़िए, और पढ़ने के लिए अगर अभी भी कुछ और उत्साहों की आवश्यकता है तो बातचीत शुरू करते हैं। व्योमेश शुक्ल से बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में।
शुक्रिया, आपने किताब में से ही तमाम सिरे उठा के उनको आपस में उलझा दिया है। बिल्कुल, अब करना क्या है बताइए।
गप करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, पर आप बोले उससे पहले मैं एक वाक्य इसका पढ़ना चाहता हूं, बल्कि वाक्य भी नहीं, जो भूमिका है, आपकी इजाजत हो तो।
है इजाजत, लेकिन फंसाइएगा मत ज्यादा।
ये किताब बनारस के आमंत्रण में डूबने और उससे बचकर निकल आने की गाथा है। जिंदा सभ्यता में योजना बनाकर दाखिल नहीं हुआ जाता। ठहरी हुई इमारतों के सामने से टहलते हुए गुजरा जा सकता है, लेकिन बनारस हाथ पकड़कर पास बिठा लेने वाली एक धड़कती हुई आदत है। जब आप उसे देखते हैं, वो भी अपनी हजार आंखों से आपको देखता है। इस अनंतता को भेदने की कोई रणनीति मेरे पास नहीं है, ये मेरी हड्डियों में है और इस बात का उत्सव आजीवन चलता रहेगा। इस मेले में आपका स्वागत है। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस किताब को पढ़ते हुए इतनी जगह भावुक हुआ हूँ, इतनी जगह अपना छिछलापन महसूस किया है, इतनी जगह सार्वजनिक होते हुए भी एकांत में गया हूँ। आपकी लिखने की प्रक्रिया क्या रही और ये विचार कहाँ से आया, और आप जिसकी पीठ पर किसी बहुत शानदार ड्राई क्लीनर की पावतियों से भी ज़्यादा गठरियाँ लदी हुई हैं उधार की, जो आपने कॉल दिए हैं लिखने के, इन सब के बावजूद आपके जो प्रकाशक हैं अनुराग वत्स, उन्होंने कितना धैर्य धरा और कितना आपको दरेरा दिया जो ये एक लघु पुस्तिका छप पाई, ये भी बता दीजिए।
हम लोग तो इस बात के हामी हैं कि जो इतिहास बनाते हैं वो इतिहास लिखा नहीं करते, तो बनारस में रहना ही अपने आप में इस तरह से शाश्वत और सनातन का कीर्तन है कि लगता है कि रह के ही आपने सब कुछ कर दिया। रहना पर्याप्त है, सांस लेना काफ़ी है, लेकिन इतने भर से बात बनती नहीं अंततः। और जो सुस्ती, जो एक ख़ास तरह का वीतराग अपने ही शहर ने सौंपा है, वो भी हड्डियों में है, जैसे कि एक तरह का अभय और एक तरह की संसक्ति है। सब कुछ तो वहीं से सीखा है, अगर बुराइयां हैं तो वहीं की हैं, तो वादा करके पूरा न करना भी वहीं से सीखा है, लेकिन मौके पर खड़े हो जाना, मौके पर वादा निभा देना, बीच बचाव करना, भीड़ भरी सड़क पर सांड बैठा हुआ है बीच में, उसको कोई माई का लाल बनारस में धक्का मार के नहीं गुजर सकता। बीच बचाव होगा, आप उसे गुंडई कह लीजिए, दबंगई कह लीजिए, रूल ऑफ ऑर्डर और संविधान की अवमानना या अवहेलना कह लीजिए, लेकिन ये होगा। मुझे पता है कि मुझसे क्या कहा जाएगा, कि दुनिया भर में चपातियाँ एक जैसी हैं, दुनिया भर में चावल एक जैसा है, दाल एक जैसी है, मखानी तंदूरी रोटी वही है, तो शहर भी एक जैसे हैं। इस एक रूपीकरण को जानता हूं मैं, और डेमोग्राफी जैसे बदल रही है इस बात को भी जानता हूं, लेकिन फिर भी हर शहर की अपनी एक लय होती है, तो हमारे बनारस की भी है। बनारस अद्वितीय है वैसे ही जैसे बगदाद है, जैसे प्रयागराज है, जैसे मुंबई है, उसमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जैसी भी हमारी अद्वितीयता है उसको कहना तो होगा ना। तो ये बात थी मेरे मन में कि कहने का काम जिन लोगों को मिला है उनमें से मैं एक हूँ। तो मैंने समय समय पर चीज़ें लिखी थी, और मेरे संपादक मित्र अनुराग वत्स को इस बात का भरोसा नहीं था कि मैं कुछ और लिख करके एक ऐसी योजना दे सकता हूँ किताब को कि ये लोग पढ़ें, उन्हें मेरे ऊपर कम भरोसा है। बहरहाल मैंने तैयार की किताब, उसके बाद जितनी चीज़ें किताब में शामिल थी उनमें से आधी उन्होंने हटा दी, इस तर्क से कि इस किताब में वही रहेगा जिसका सीधा संबंध बनारस से है, तो आधी चीज़ें हट गई। और मैं इसे बहुत खुशकिस्मती मानता हूँ अपनी कि एक संपादक विहीन होती जा रही भाषा में मुझे एक ऐसा संपादक और प्रकाशक मिला जिसने मुझसे कहीं ज़्यादा मेरी किताब को प्यार किया, और उसका नतीजा आपके हाथ में है। लिखते समय मुझे ये भी ख्याल था कि ये आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी। आप जिस तरह से शहरों को सूंघते हैं उसमें ये किताब भी कुछ मदद करेगी या कुछ दिक्कत पेश करेगी?
दोनों ही हैं, आएंगे उस पर। बनारस की पहचान के सारे बिंब भटके हुए देवता हैं, वे अपने मंदिरों से बाहर निकलकर भक्तों की अंतहीन कतार में खड़े हैं। समय नाव में बैठा है और साधु का लंगोट आसमान में पतंग की तरह लहरा रहा है। ये हमारे और आपके पुरखे और बनारस के नागरिक, तब जबकि नगर किन्हीं मंत्रालयों की योजनाओं के अधीन भर नहीं था, तब की बात है। जरा कबीर का एक किस्सा सुनाइए, राजा वाला, सिकंदर लोदी वाला, चीटी वाला, उसके काजल वाला।
बहुत मज़ेदार किस्सा है, किताब में भी दर्ज है वो, कि सिकंदर लोदी तमाम दुनिया जीत लेने के बाद बनारस आया तो उसने कबीर को बुलवा भेजा। कबीर तक बात पहुंची होगी, कबीर से कहा गया होगा कि जाना ज़रूरी है नहीं तो मार दिए जाओगे आदि आदि। कबीर तैयार हुए, और कबीर ऐसे वैसे नहीं तैयार होते थे। बाकायदा नहा धो के, श्रृंगार करके, सर पे सफ़ेद पगड़ी बांध के और मोर मुकुट लगा के। दो ही मोर मुकुट हैं, एक वृंदावन वाला
जी
और एक लहरतारा
वाला। हम तो मोर पंख के मुरीद हैं, चाहे वो गोकुल वाला हो चाहे चौरा वाला। जी,
तो चौरा वाला मोर मुकुट लगा के चल पड़े होंगे वहाँ से, और उनके पीछे भीड़ भी चल पड़ी होगी। कबीर अकेले नहीं चलते थे, जो अकेले चलता है वो कबीर नहीं होता। जो काम अकेले किया जा सकता हो वो बड़ा काम नहीं होता, और अकेले चलने वालों का नाम नहीं है कबीर, तुलसी और रैदास। ये हिंदी की समकालीन व्यक्तिवादी कविता ध्यान से जान ले और सुन ले। अगर आप अकेले हैं तो अपने काम के हैं, आपके साथ समूह का गुंजायमान होना ही चाहिए। तो कबीर निकले, जुलूस उनके पीछे पीछे चला, और पहुँचते पहुँचते देर हो गई। और वाकई उस दिन सिकंदर लोदी ये ठान के आया था कि इस आदमी को दंड देना है, क्योंकि वो समान रूप से आलोचना कर रहा था इस्लाम की भी जैसे हिंदू धर्म की करता था वो आदमी जिसका नाम कबीर था। तो उसने कबीर से पूछा कि देर क्यों हो गई, तो कबीर ने वही जवाब दिया कि रास्ते में देर हो गई क्योंकि एक चींटी मिल गई थी, वो नौ मन काजल लगाए थी, और उसके एक कंधे पर ऊंट था, दूसरे कंधे पर हाथी था, तो उसी को देखने में, उसी का तमाशा देखने में देर हो गई। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि सिकंदर लोदी समझदार था। इतिहास में ऐसा सौभाग्य कभी कभी आता है कि कोई राजा समझदार निकल जाता है, तो सिकंदर लोदी समझ गया कि कबीर की आवाज़ में, कबीर अकेले एक होकर नहीं, पूरी सभ्यता के सुर में, उसके वृंदगान में बोल रहे हैं, तो उसने कबीर को छोड़ दिया। कबीर की लिंचिंग नहीं होने पाई, कबीर बच गए।
थोड़ा सा सिनेमाई शैली का इस्तेमाल करते हैं और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, गो कि रहेंगे अतीत में ही, और कबीर के साथ चल रहे जत्थे की जगह अब भारतेंदु के साथ चल रहे जत्थे पर आते हैं, क्योंकि उनको स्वामी दयानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ करना है। बताइए, भारतेंदु एक और अहम नागरिक बनारस नाम की सभ्यता के।
भारतेंदु आप जानते हैं, उनको भी भीड़ बहुत पसंद थी, और भीड़ मतलब कोई भीड़, जब मैं कह रहा हूँ तो समूहवाचक संज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उस भीड़ में जैसे नवरत्न अकबर के दरबार में थे वैसे वैसे लोग थे। आप याद कर लें, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, और ये तो उन साहित्यकारों के नाम हैं जो हमें कक्षा आठ से लेके एमए और रिसर्च के दौरान रटाए गए हैं। हम नवजागरण के दौर की तवायफों के नाम नहीं जानते, वैद्यकों के नाम नहीं जानते, मीमांसा, व्याकरण और न्याय के विद्वानों के नाम कम जानते हैं। तो उन सबों को मिला के प्रकाशक कौन थे? भारतेंदु ने एक बार तय किया था कि अपने समय की मशहूर तवायफों के, नाचने गाने वाली स्त्रियों के चित्र जो है रंगीन प्रिंट में बनवा कर बेचेंगे। और ये अभियान तो बहुत खर्चीला था क्योंकि प्रिंट होने यूरोप जाते थे चित्र, वहाँ से प्रिंट होकर लौटते थे। ऐसे कुछ चित्र भारत कला भवन में हैं भी अभी। तो ये कैसी अभियानात्मकता थी, कैसी हार खाई हुई जिसका अंत पता नहीं था क्या भारतेंदु को? वही परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी का बैंकर था, सेठ हमीचंद उसी परिवार के थे जो कलकत्ते की सड़कों पर वो पीला वाला कागज लेके पागल होके घूमे थे। तभी तो कहते थे भारतेंदु की धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है और मैं इसे खाऊंगा। तो पैसे की और संपत्ति,
इधर हमीचंद वाला प्रकरण विस्तार से बताएं।
हमीचंद ने गद्दारी की थी पहले गदर में, स्वाधीनता संग्राम का जो पहला अध्याय था 1757 वाला जो प्लासी का युद्ध था, उसमें मीर जाफर को सिराजुद्दौला से गद्दारी करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हमीचंद ने दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वादा किया था कि जब ऐसा हो जाएगा, जब गद्दी बदल जाएगी, सिराजुद्दौला ख़त्म हो जाएगा, तो हम तुमको फलां 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 चीज़ें देंगे। और इसके लिए एक परवाना जो है वो दस्तखत किया था दोनों लोगों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने और हमीचंद ने। वो पीले रंग का एक कागज़ था, जाहिर है कि गैर सरकारी, लेकिन क्लाइव के हस्ताक्षर थे उस पर, और वो कागज़ ऐसे ही दे दिया। जब वो तख्ता पलट गया वहाँ पर प्लासी के युद्ध में, सिराजुद्दौला की हार हो गई, तो हमीचंद कागज़ लेके पहुँचे कि अब भाई मैंने तो कर दिया, लेकिन क्लाइव मुकर गए, उन्होंने कुछ भी वापस नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद हमीचंद का जो मनोविच्छेद का शिकार हो गए वो, और कलकत्ते की गलियों और सड़कों पर पागल होकर घूमे नहीं रहे, और वहीं से उनका परिवार बनारस की ओर स्थानांतरित हुआ। वो पूरा कुटुंब उठकर बनारस चला आया। बनारस में भी बहुत जल्दी स्थापित हो गया, इतना स्थापित हो गया कि बनारस में जो 1/1 square kilometer का चौखंभा मोहल्ला है, जो नवजागरण का केंद्र है, बहुत धड़कता हुआ स्पंदित, और जहाँ पर गोपाल मंदिर है, जहाँ पर 200-200 साल पुराने अग्रवालों के, खत्रियों के, कुशवालों के शिक्षण संस्थान और समाज सेवा की संस्थाएं हैं, वहाँ पर एक गोपाल मंदिर भी है। वो वैष्णव भक्ति के, वल्लभाचार्य की परंपरा के लोग हैं। गोपाल मंदिर का समाज पर ये प्रभुत्व रहा है कि मंदिर की कटौती कटती थी। जैसे 100 रुपये का व्यापार आपने किया, वो व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर है, बनारसी साड़ी के कारोबार का शायद सबसे बड़ा केंद्र है। तो 100 रुपये का धंधा हुआ तो 2 रुपया गोपाल जी का है, और दोनों ओर से 4 रुपये उनके हैं। ये कटौती कटती थी, तो वो गोपाल जी की जो प्रतिमा है वो भारतेंदु के दादाजी के बचपन का रूप है। मतलब जो शिल्पित गोपाल जी हैं, आराध्य वैष्णवों के, वो भारतेंदु के दादा का बचपन है। ये है उस परिवार का प्रभुत्व। लेकिन भारतेंदु इसको पार कर जाते हैं। भारतेंदु नौजवान होते होते इतने बदनाम हो जाते हैं कि भगवान दास अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनकी सीधी रिश्तेदारी है डॉक्टर भगवान दास, भारत रत्न, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, इस घर में मत जाना, भारतेंदु के घर की ओर दिखा के। भारतेंदु बदनाम थे क्योंकि भारतेंदु अकुंठ थे, भारतेंदु वर्जनाएं नहीं मानते थे। भारतेंदु के पास जैसे प्रताप नारायण मिश्र थे, वैसे ही हुस्नाबाई भी थी, और अपने समय की मल्लिका भी थी, और दूसरी स्त्रियां भी थी। तो वो पूरा मंडल जो था, जो काफ़ी उद्दंड था, हम लोगों ने नवजागरण वाले प्रसंग में ये सब पढ़ा है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद का जीना हराम कर दिया था भारतेंदु ने, जो उनके खास गुरु थे सीधे सीधे। तो सनातन के पक्ष में उन्होंने आर्य समाज के स्थपति दयानंद सरस्वती से कुछ सवाल पूछे थे लिखकर, तो ये हुआ कि शास्त्रार्थ होगा। तो DAV PG कॉलेज में, जहाँ पर अब वो इमारत है, वहीं शास्त्रार्थ होना तय हुआ। तो दयानंद से क्या शास्त्रार्थ करेंगे भारतेंदु? दयानंद तर्कों के पंडित, महाविद्वान, और भारतेंदु हिंदी के कवि, लेकिन वो उसी परंपरा के कवि थे जिसके पीछे भीड़ होती थी। हिंदी का कवि दरअसल भूल गया है कि वो जनता का अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये शक्ति पता नहीं कहाँ चली गई है, मुद्रण में और प्रकाशन में और मंच की कविता में और इंस्टाग्राम रील्स में। ये जो ठोस जनबल था उसके पास, वो स्वाहा हो गया है, वो कपूर की गंध की तरह हवा में उड़ गया है। उसको पकड़ के वापस ले आने की ज़रूरत है। संभव है कि नहीं पता नहीं, एक असंभव आकांक्षा है मेरे भीतर ये। तो भारतेंदु भीड़ के साथ पहुँचे और वो सब गाना गाने बजाने वाले, ढोल मजीरा वाले, रामलीला करने वाले, नुक्कड़ करने वाले, नाटक करने वाले लोग थे। तो जैसे ही उनका तर्क कमजोर होता, ढो अल्लाह कुछ कर देते थे वहाँ पर। तो दयानंद सरस्वती हार गए, बोले कि तुमसे भैया हम बहस नहीं करेंगे, बस बहुत हुआ। और वो ऐसे ही भारतेंदु ने दयानंद सरस्वती को निरुत्तर कर दिया अपने हो हल्ले से, यही लिखा है मैंने।
आप जब ये सब बता रहे थे व्योमेश, तो मुझे मेरा मन किताब के ही जरिए कई तरफ जा रहा था। मुझे पता नहीं क्यों, जब इन शक्ति केंद्रों के बारे में सुन रहा था, तो एक वो दृश्य याद आ रहा था जिसके बारे में पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगा। पर सब कुछ अच्छा हो वो ज़रूरी तो नहीं, मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता कि किन्हीं कमलापत त्रिपाठी या किन्हीं सुधाकर पांडे के घर के आयोजन में उस्ताद बिस्मिल्ला खान ज़मीन पर बैठकर बजा रहे हैं। पर सोच तो हम ये भी नहीं सकते कि हमने जिन्हें महानता के आले में ऊपर बिठा दिया है, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं और उनकी मांसपेशियों को, अस्थि मज्जा को अपने हिस्से का ईंधन चाहिए ताकि वो जीवन में विचर सकें। बिस्मिल्ला खान साहब के बारे में बताइए, उनके संघर्ष के बारे में बताइए। और इस किताब, मैं अमूमन किताबें पढ़ते वक्त फ़ोन से दूर रहता हूँ, पर इस किताब को पढ़ते हुए, ख़ास तौर पर उस्ताद वाला चैप्टर पढ़ते हुए, आपकी टिप्पणियाँ पढ़ते हुए, मैं जिन गानों का आपने जिक्र किया, चाहे वो आवारा का गाना हो जिसमें ज्वाइंट में शहनाई आती है, या फिर उसके बाद जो एक लगभग कंगाल हो चुके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनको उबारने के लिए जो संगीत दिया गया वो गाना हो, तो कुछ एक दफ़ा वैसा भी हुआ, तो
विजय भट्ट को उबारा था उन्होंने, गूंज उठी शहनाई,
वो गाना क्या था, मैं
घर आया मेरा परदेसी,
नहीं नहीं घर आया मेरा परदेसी तो इसका था, गूंज उठी शहनाई का एक गाना है ना लता जी का गाया हुआ,
दिल का खिलौना है,
दिल का खिलौना हाई टूट गया, जी भैया दोपहर में सुन रहा था। बताएं साहब,
बिस्मिल्ला खां की महानता के पीछे एक नीला खोखल भी था जो अनाज मांगता था, रोटी मांगता था, ये बात भूल गए हम लोग। सुधाकर पांडे पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक नेता थे 70 के दशक में, उनकी बेटी को बेटा हुआ तो कार्यक्रम घर पे नहीं हुआ था भाई साहब, जो ज़िला अस्पताल था, ज़िले के अस्पताल के सारे डॉक्टर्स प्रसव के बाद बेटी और दामाद की सेवा में लगे हुए थे, और अस्पताल के परिसर में जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती थी वहीं पर एक सफ़ेद चादर बिछा के बिस्मिल्ला खां उनके संगतकार ज़मीन पर बैठे थे और लोग सीढ़ियों पर खड़े होकर के गाना बजाना सुन रहे थे, ऐसा हुआ था। शहनाई कैसे बजती है हम सब लोग जानते हैं, नौबत खाना भी जो होता है मंदिरों में, नौबत खाना होता है जिस मंदिर के मुख्य द्वार पर ये पट्टिका लगी होती है कि आर्य धर्म से इतर जो लोग हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उसी मंदिर के बाहर के नौबत खाने पर बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे, वो चाहे बालाजी मंदिर हो या बड़ा गणेश का मंदिर हो। ये विडंबना तो बद्धमूल है ना, अगर इसको भी एक तरफ कर दें बिस्मिल्ला खां को समझने की कोशिश में, तो भी आप देखिए कि जैसे विवाह के बाद गंगा पुजैया की रस्म है, तो गंगा पुजैया के समय जब वर और वधु गांठ जोड़ के गंगा जी की ओर जाते हैं तो वो तो खैर बहुत मृदुल और मधुर स्मृति है कि आगे आगे शहनाई वाला और दुक्कड़ वाले चलते हैं। तो बिस्मिल्ला खां ने ये सब बजाया है, और अगर वो ये ना बजाते तो वो बिस्मिल्ला खां ना होते, वो उस्ताद ना होते। मुहर्रम में करबला की ओर जाने वाले जो जुलूस होते हैं उसमें हुसैन का गम उन्होंने बजाया है, वो तारीखें होती हैं मुहर्रम की 7वीं तारीख को, 11वीं तारीख को, और जो बात थी वो ये थी कि बहुत सरल किया है उन्होंने अपने शिल्प को, असंभव सरलता से वो जितना रॉ हो सकता था, जिसको आप एक बनैलेपन में पहचानते हैं, बनैला कहते हैं, एक एकदम उसका जो ओरिजिनल स्वरूप संभव था उसको एस्टेब्लिश किया बिस्मिल्ला खान ने। और आज हालत ये है कि बधैया जैसे बजाते हैं वो, गंगा पूजन वाला गीत जैसे वो बजाते हैं, शादी के गाने जैसे बजाते थे, कजरी बजाते हैं, चैती बजाते हैं, वही रूप जो है अविकल, मूल और अंतिम मान लिए गए हैं। हर अगला कलाकार उन्होंने उसको किसी और तरह से कर देना एकदम वो कर दिया है, नामुमकिन बना दिया है। कजरी जैसे बिस्मिल्ला खान साहब ने गाई है, अगर वही लचक, वही काम उसके भीतर, राग के घर के भीतर आप करके दिखा देंगे तो आपका काम सही है, अगर आप कुछ अलग करेंगे तो आपको एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे आप। और इसी विडंबना, इसी मैं इसको क्राइसिस मानता हूँ कि इतनी बड़ी लकीर है कि दूसरी लकीर खींचना मुश्किल हो जाए। और इसके भीतर से एक और मुश्किल पैदा होती है कि बिस्मिल्ला खान साहब के जो घर वाले थे, उनके भतीजे, बेटे, दामाद, भांजे आदि आदि, जो मिल करके एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा बनाते थे, मतलब बिस्मिल्ला खान की एक केंद्रीय शहनाई के पीछे 12-12 10-10 शहनाइयाँ बसती थीं, 3-3 दुक्कड़, 2 जोड़ी तबला बसता था। तो वो सारी शहनाइयाँ अगर आप एक काला पर्दा लगा दीजिए तो आप बता नहीं पाएंगे कि बिस्मिल्ला खान साहब बजा रहे हैं कि कोई दूसरा कलाकार बजा रहा है। मैंने तब उसको कम जाना था जब इस किताब वाला निबंध लिख रहा था कि मंच पर एक शहनाई एक सांस कम पड़ जाती है, एक सांस से एक घंटे तक एंटरटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितनी भी दमकशी हो, कितना भी रियाज हो, उम्र कितना भी साथ दे रही हो, सेहत, वो 4-5 शहनाइयाँ रहती हैं तो थोड़ा जगर बगर, थोड़ा रौनक बढ़ जाती है, थोड़ा सुंदर लगने लगता है, थोड़ा भराव कान को मिलने लगता है। लेकिन इसका क्या करेंगे कि सब लोग वही शहनाई बजा रहे हैं, वैसे ही रुक रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही रिफ्लेक्सेस दे रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना होगी, मैं इस तुलना के लिए मुझे माफ़ किया जाए, कि द ललन टॉप के सारे यंग पत्रकार जो हैं वो आपके रिफ्लेक्सेस में दिखने लग जाएं, आपकी तरह बात करने लगें, आपकी तरह वाक्य बनाने लगें, आपकी तरह बोलने लग जाएं। तो इस विडंबना का शिकार हुई है शहनाई, इसीलिए हमारे पास दूसरा बिस्मिल्ला खान नहीं है।
उस्ताद से अब सीधे चलते हैं, जो आपने जैसे दो रूपक रखे एक दूसरे की तरफ, कि एक तरफ बिस्मिल्ला खान हैं, उनके हिस्से की सब महानता है, उनके पास की सब कृपणता भी है, और उसके दूसरे सिरे पर हैं किशन महाराज, जिसके लिए आपने शब्द इस्तेमाल किया है मध्यवर्गीय औदात्य, उनके बारे में बताएं।
किशन महाराज के तबले की नकल नहीं हो सकती, वो पहली बार सुनने में ही इतना कर्कश है, और ये कहने के लिए मुझे माफ़ किया जाए, वो खुले अंग का बाजा है, उसमें मधुरता का एक तरह से तिरस्कार है, और तिरस्कार न भी कहें, मधुरता की अवमानना न भी करें, तो मधुरता को एक तरफ रख के कुछ और करने की कोशिश है।
तिर्यक भंगिमा है।
और बनारस वाला जो रेरियाने वाला अंदाज है, अबे सुन वाला, वो है कुछ जैसे गली में किसी को पुकार के बुला लेंगे, थोड़ी सी दबंगई है उसमें, थोड़ी सी अखाड़ेबाजी है, दरअसल वो है पखावज बोल का हाथ, पखावज की तर्ज पर तबला बजाने की कोशिश। जैसे ता जो है पूरे देश में ऐसे बजाया जाता है, इस उंगली को मोड़ के, यानी इसको अनामिका कहते हैं ऐसे, लेकिन वो लोग ता जो है ऐसे बजाते हैं, ऐसे
चारों उंगली से
ता बजाते हैं। अब चारों उंगली से ता बजाना द्रुत लय में, अति द्रुत लय में हमेशा संभव नहीं है, लेकिन जब जब संभव है तब तब वो ऐसे ही बजाते हैं। धा पूरे देश में ऐसे बसता है, बायां ऐसे करके वो लोग ऐसे भी बजाते हैं। खरज में रखते हैं तबला बायां वाला, जैसे यहां बोलेगा बायां, यहां नहीं बोलेगा, ऊंचे सप्तक पर नहीं। तो ये कमाल है, किशन महाराज थे रुद्र के एक अवतार, देखने में भी वैसे लगते थे, सजने संवरने का किसी रॉकस्टार जैसा, बल्कि किसी मॉडल जैसा शौक, किसी नायिका जैसा शौक था उनको। जब एकदम धवल केशी हो गए थे और कंधे तक उनके बाल बिखरे रहते थे, तो मैंने एक दोपहर उनका दरवाज़ा खटखटाया तो काली लुंगी, काला कुर्ता और कम से कम 25 तोले का हार सोने का गले में, हीरे से मंडित और सफ़ेद बाल। तो अरनिश श्रृंगार में
फिर क्या संवाद हुआ जब आपने दरवाज़ा खटखटाया और ये रूप देखा?
मैं तो दंग रह गया, पहले मैं डर गया। मतलब सुंदरता सबसे पहले तो आपको डरा देती है ना, तो मैं कांप गया। मैंने उनके पैर छुए, मुझे उनको एक समारोह में ले जाना था तो मैं उनको ले के चला गया। और वहाँ जा करके उनका पोता जिस अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ता था और जो इस समय का बहुत बड़ा तबला वादक है हमारा दोस्त शुभ महाराज, उस स्कूल के गाने बजाने की बुराई करने लगे मंच से। मुझे पता है किशन महाराज के घर के बारे
में। क्या करें भाई, साज संगत में नहीं है तो।
हाँ, सुर अगर सही नहीं है, बेसुरा बज रहा है तबला, मतलब पंचम पर नहीं मिला हुआ है, गाना पाव से गाया जा रहा है, तो क्या करेगा? कान में पारा थोड़े डाल लेगा, झूठ कैसे बोलेगा? लाख उसके पोते की फीस माफ हो स्कूल में। तो ये था किशन महाराज में, ये बात थी। किशन महाराज का तबला वैसे इमिटेट नहीं हो पाया, उसको कॉपी करने वालों ने भी उसको बदल बदल के बढ़त के साथ बजाया है। और एक जो बहुत सुखद बात है किशन महाराज के साथ, कि एक तो उनका जन्मशती वर्ष बस शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, 100 बरस के हो रहे हैं वो, मतलब अगर वो जीवित होते तो उनका 100वां जन्मदिन होता। उनके शिष्य बहुत ब्रिलियंट शिष्य मिले किशन महाराज, कुमार बोस, सुखविंदर नामधारी, और दूसरे माध्यमों में भी चले गए तमाम विदेशी शिष्य उनके जो है, जैसे कुछ कुछ और नृत्य में उनके अंग का विकास हुआ, बोल पढ़ंत में उनका बोल। उनके पुत्र जो हैं पंडित पूरन महाराज जी, जिनकी बेटी का तबला वादन एक दिन ललन टॉप में रिकॉर्ड भी किया था बनारस में, वो खुद बहुत अच्छा तबला बजा रही है। उन वो घर बनारस के गिने चुने उन घरों में से है जहां अभी भी नियमित तबले की पढ़ाई हो रही है, तबले का रियाज हो रहा है, बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा वाले मैनर में। और औदात्य ऐसा था कि घोड़ा पालते थे, चिड़िया पालते थे, गणेश जी की एक विशाल वृहदाकार प्रतिमा का निर्माण उन्होंने खुद से किया था मिट्टी से। मुझे तो आखिर तक उनके प्रति तमाम आदर के बावजूद लगता है कि इसमें कोई गोलमाल है, प्रतिमा कैसे बना लेगा कोई तबला वादक। मुझे यकीन नहीं होता कि एक माध्यम में इतनी निष्णातता हासिल करने के बाद। लेकिन मैं खुद को समझाता हूँ कि जैसे हम ये मानते तो हैं कि पंडित भीमसेन जोशी कार जो है बना लेते थे, कार के बहुत अच्छे मैकेनिक थे, तो वैसे ये क्यों नहीं मान सकते कि किशन महाराज प्रतिमा बना लेते होंगे?
वैसे भी मानना और होना बड़े करीब की बात है।
करीब की बात है, करीब की बात,
ना मानो तो होना भी ना होना है, और
मानना
तो
पड़ता ही है। सही कह रहे हैं, किशन महाराज में महादेव रिफ्लेक्ट होते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे। आप उनको देख लीजिए, ये तबला जो है, हम कुर्सी पर बैठे होते और तबला जमीन पर बज रहा होता। हम लोग भूल जाते हैं इस बात को, क्योंकि प्रदर्शनकारी कलाओं का कोई व्यवस्थित इतिहास हमारे पास नहीं है। संपूर्णानंद जी राजस्थान के राज्यपाल थे, गिरिजा देवी का गायन था, संगत किशन महाराज को करनी थी, मंच सजा हुआ था, दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी थी, कलाकारों के गाने बजाने का इंतजाम जमीन पर था। किशन महाराज ने कहा संपूर्णानंद जी से, जो उनसे उम्र में बड़े थे इसलिए वो संपूर्णानंद जी को बाबू कहते थे, बाबू हम जमीन पर बैठ के ना गाई बजाई, तू लोग ऊपर बैठबा हम नीचे बैठब, ई ना हुई। गिरिजा देवी पीछे से हाथ खींच रही है, भैया जायदा जायदा, भैया रुक जा, मतलब रुक जाइए। किशन महाराज रुकने वाले आदमी नहीं थे। तो संपूर्णानंद जी ने अपने वार्धक्य का हवाला दिया कि हमार घुटना खराब हो, हम जमीन पर बैठ के कैसे सुनब, अब इतना जल्दी तुहार मंच ऊंचा ना लग पाई, बतावा का करी। तब उन्होंने कहा कि बाकी सब लोग जमीन पर बैठेंगे हमारे बराबर, और आप पीछे बिल्कुल कुर्सी पर बैठ जाइए। तो संपूर्णानंद जी बिल्कुल पीछे कुर्सी पर बैठ के गिरिजा देवी का गाना सुन पाया जयपुर के राजभवन में। ऐसे आया है तबला ऊपर, लाइन लगा के पद्म पुरस्कारों के लिए और अकादमी पुरस्कारों के लिए, जैसे राशन कार्ड्स राशन की दुकानों पर लाइन लगती है, यथा स्थिति के पक्ष में सर झुका देने से। मुझे पता है शाहे वक्त की तारीफ करनी होती है, वो परंपरा का गुण है, हम भी करते हैं।
भारतेंदु ने भी विक्टोरिया की प्रशस्ति गाई,
बिल्कुल गाई है, लेकिन वही एकमात्र इकलौते भारतेंदु नहीं है। उसी समय वो
अंधेर नगरी चौपट राजा भी लिख रहे थे।
हमारे गुरुजी वीर भारत तलवार साहब ने न जाने क्यों इस बात की उपेक्षा की है, भारतेंदु के डायलेमा की, भारतेंदु के उभय संभव को छोड़ के उन्होंने विमर्श किया है।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को नायकत्व तो बख्शने के लिए एक खलनायक तो बरकत जरूरी था।
जरूरी नहीं था भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि
अगर
उनकी नजर में जरूरी बन गया है,
वरना रस्सा कशी कैसे स्थापित हो, पहलवान तो जोड़ का दिखाना होगा। किशन महाराज के तबले से चलते हैं तबले के ही एक दूसरे हस्ताक्षर की तरफ, जो नितांत अकेला है और बड़े ऊबड़ खाबड़ रस्ते पर अपनी साधना कर रहा है, लच्छू महाराज। और उनसे तो बातचीत भी इसमें किताब में है।
लच्छू महाराज बहुत भीड़ आदमी थे, पता नहीं उनके घर वाले ये इंटरव्यू सुनेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। वो तीन वक्त गांजा भी पीते थे, मैं लिख नहीं पाया ये बात, इसको मैं लिखूं कैसे। बाबा को चढ़ा के, बाबा का प्रसाद था वो, भांग और गांजा तो बाबा को चढ़ता है ना, और एक दालमंडी वाली जो गली है, जहाँ जहाँ पर सारी तवायफों के कोठे हुआ करते थे, आप समझिए कि एक चौराहा है चौक नाम का, चौक तो हर शहर में होता है, वो क्षेत्र है जो आनंद कानन जिसे कहा गया है काशी खंड में स्कंद पुराण के, उसी चौराहे से, चौक से एक रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ यानी धर्म की तरफ, एक रास्ता जाता है मणिकर्णिका की तरफ यानी मोक्ष की तरफ, एक रास्ता जाता है ठठेरी बाजार की तरफ यानी अर्थ की तरफ, और दाहिने वाला रास्ता जाता है
दाल मंडी की तरफ,
काम की तरफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों संपुंजित हो जाते हैं उस चौराहे पर। तो दाल मंडी वाली बिल्कुल संकरी गली में, अब तो कुछ बचा नहीं, सरकारों ने समाज सुधार के जोश में चैम्बर म्यूजिक की हवा निकाल दी, जबकि सब अच्छे बड़े घरों के बेटे कोठों पर तवायफों के यहाँ तहजीब सीखने जाते थे। और मुझे माफ़ किया जाए, मैं सिर्फ आपको समझाने की गरज से तवायफ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उसका कोई प्रतिशब्द मेरे पास नहीं है। मुझे लिखना होता है तो मैं लिखता हूँ नाचने गाने बजाने वालियों के यहाँ, क्योंकि तवायफ में एक तरह की हिकारत है जो जिसका साउंड कम से कम मैं नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि बड़ी मोती जब दालमंडी से आवाज लगाती थी तो वो आवाज 3 किलोमीटर दूर कबीर चौरा पे किशन महाराज के घर पे सुनाई देती थी, आधी रात का जो रियाज था, और वहां वो तबला कई बार बजा चुके हैं, मुझे बताया है उन्होंने। शहर में शोर नहीं था ना, इंजन वाली गाड़ियां नहीं थी, 40 के दशक की बात है, बड़ी मोती गा रही है यहाँ पे रात का कोई भी राग, तीसरे पहर का, चौथे पहर का, भैरवी ही गा रही हैं वहां पे, तबला बजा रहे हैं अपने घर पे वो। अब नहीं संभव है, अब एक ही मोहल्ले में नहीं संभव।
इतना अलौकिक लग रहा है ये सुनने में ही, इसकी चित्रात्मकता और ध्वन्यात्मकता ऐसी है।
एक बार एक किस्सा है, किशन महाराज के शब्दों में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, ये तो सुनी हुई बात नहीं है, पढ़ी हुई है, कि हरिशंकर जी पंडित बड़े रामदास जी की जो गायनाचार्य जिन्हें कहा जाता है, और बनारस अंग की जो गायकी है उसके प्रथम पुरुष हैं वो। बनारस दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ तीनों चीज़ों के घराने हैं, यानी कथक डांस, तबला और गायकी। तो गायकी का घराना जो है उसके प्रथम पुरुष बड़े रामदास जी हैं, उनके भतीजे थे हरिशंकर जी। तो वो आधी रात के बाद कुछ लगाने बजाने का रिवाज रहा, घर पहुंचे तो उनकी पत्नी उनसे कुछ नाराज़ थी, भोर होने को थी, अब वो खटखटा रहे थे कुंडी, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अब भैरवी में एक बंदिश शुरू की उन्होंने वहीं से, और कुंडी को तबला बजा के कुंडी बजाते रहे दरवाजे पर। किशन महाराज जी ने बताया लिखा है कि हम लोग छोटे छोटे थे, घर से सब बड़कवा लोग निकल आए बाहर, राम सहाय जी के घर से शारदा सहाय जी, उनके पिताजी लोग निकल आए, किशन महाराज जी के पिताजी कंठे महाराज जी निकल आए, सिद्धेश्वरी बगल से उठ के निकल आई, सब लोग सुनने लगे हरिशंकर जी का गाना। और ऐसी भैरवी अवतरित हुई थी उस दिन जिसकी की कोई मिसाल नहीं है कहीं। तो ये भी होता है इसी बनारस के इसी माहौल में। लच्छू महाराज जो है, मैंने 2000 के दशक में, संभवतः 2005-06 में उनका वो इंटरव्यू लिया है जो इस किताब में भी है। तो नीचे बिल्कुल मजमा लगा, बाजार लगा हुआ है, चिल्लपों खरीदो फरोख्त, श्रृंगार के सामानों का, टिकुली बिंदी चूड़ी लिपस्टिक असली नकली, बर्तनों का प्लास्टिक के चीनी मिट्टी के, लालटेन पेट्रोमैक्स, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा बाजार है दाल मंडी, और हड़हा सराय उससे जुड़े हुए मोहल्ले हैं। उसके ऊपर एक कमरे में एक आदमी तबला बजा रहा है दोपहर में 2 बजे, ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्य में डुबा देने वाली बात थी। तो मैं पहुंचा, उनसे बातचीत करने लगा, तफसील किताब में है, और बहुत जोरदार आदमी थे, बहुत डांट डपट के रखते थे सबको। लालू प्रसाद जी वाला किस्सा आपने
नेता नगरी मैंने सुनाया था जी।
नेता नगरी में सुनाया ही था
मैंने, तो सुना है कि कोई और लूट रहा है।
और जेल में जाके इमरजेंसी के दिनों में युवजन साथियों के रंजन के लिए उन्होंने तबला बजाया है। बाद में कमलेश जी जो हिंदी कवि थे और जो इमरजेंसी के दिनों में लापता हो गए थे, उनके घर पे महारानी बाग में उन्होंने न जाने कितनी अंतरंग महफिलों में तबला बजाया, सिर्फ इसलिए कि जॉर्ज हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हैं बिहार वाले मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर,
राजनारायण जी को तो वो बहुत मानते थे। अब आप राजनारायण को ले आए हैं तो जरा मूर्ति का किस्सा भी हो जाए। राजनारायण का मूर्ति उखाड़ना और फिर वहां पर मुलायम सिंह के द्वारा राजनारायण की मूर्ति लगाना, जो बारिश का असर रहा हो या भीतर की बारिश का, मुलायम सिंह से दिखती थी।
राजनारायण जी से सब लोग कहते थे कि बताइए वहां विक्टोरिया की मूर्ति है।
ये वही राजनारायण हैं जिनकी चुनावी पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म की थी। ये वही राजनारायण हैं जिन्हें चौधरी चरण सिंह का उत्पाती बंदर कहा जाता था। ये वही राजनारायण हैं जिनके अतरंगी किस्से लटियंस दिल्ली से लेकर बनारस तक कौंधते हैं, दौड़ते हैं। ये वही राजनारायण हैं जो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे और इन पर इल्ज़ाम लगा कि कुछ सामान भूल आए थे, इसलिए हवाई जहाज़ एक विदेशी जगह पर इनका इंतज़ार करता रहा। वो सामान क्या था, इसकी भी एक लंबी कहानी है। ये वही राजनारायण हैं जो उन्हीं चौधरी चरण सिंह से खफा भी हो गए। ये वही राजनारायण हैं जो 1977 में फिर से इंदिरा को हरा कर जीतते हैं। और ये वही राजनारायण हैं जो इन सब के बावजूद सब जगह मौजूद थे, लेकिन उनकी चर्चा कहीं अब नहीं होती है।
वही राजनारायण जी जिन्होंने एक नारा दिया था, भागे रे हवा खराब हो, ये बनारस की भाषा में काशिका का नारा है बिल्कुल। लेकिन 75 वाले दिनों में, 77 वाले चुनाव में, वो पूरे देश में लगा किया, भागे रे हवा खराब हो। कांग्रेस की हवा खराब करने में इस नारे का बहुत बड़ा रोल है। राजनारायण जी से योजन सब मिलते थे, और योजन तो किसी के माने के होते नहीं ना। तो समता घर में जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर था वो बिल्कुल मेरे घर के ठीक पीछे है, तो मेरी माँ योजन सभाई थी, मेरे मामा भी।
ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो,
हाँ ध्यान दे जी ने बिल्कुल,
ये जो पुरानी समाजवादी धारा है जिसमें सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो प्रसोपा संजोपा वाली धारा है जिसकी ये सब पैदाइश हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया जिसके पुरोधा रहे, ये उस सोशलिस्ट धारा की बात हो रही है।
बिल्कुल, आचार्य नरेंद्र देव
जी
जिसके
आजाद भारत का पहला और सबसे ऐतिहासिक उपचुनाव जो अयोध्या फैजाबाद की विधानसभा पे लड़ा गया, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव जो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे उनके मतभेद हो गए थे और फिर वो अलग से लड़े, फिर कांग्रेस ने एक संत को उतारा और प्रचार में कहा कि आचार्य नरेंद्र देव को अयोध्या फैजाबाद वाले कैसे वोट दे सकते हैं, वो तो नास्तिक व्यक्ति है। वही आचार्य नरेंद्र देव इस देश में उपचुनावों ने भी हवा के खूब बयान दिए हैं
जी, बहुत बयान दिए हैं। राजनारायण जी तो समता घर में, जो तब की समाजवादी पार्टी का दफ्तर था, उसमें बहसें होती थी और हर बहस समाजवादी संस्कृति जो थी, आप याद कीजिए लोहिया जी ने लिखा है कि विचार तेज गति से चलते हैं और संगठन उनके मुकाबले धीमी गति से चलता है। विचार गतिमान होते हैं, संगठन जड़ हो जाता है, तो विचारों की ताकत से संगठन को तोड़ देना चाहिए। तो राजनारायण जी ने उनके इस कथन का अक्षरशः पालन किया और 15 बार संगठन तोड़े अपने ही संगठन जो है। तो संगठन तोड़ने में सिर्फ विचारों से या भाषा से नहीं टूटते संगठन
जी,
उसमें कुछ शरीर कुछ हाथ पैर भी लगाना होता है। तो योजन सभाइयों की सारी मीटिंग्स जो हैं वो जूतम पैजार और मारपीट में बदलती थी और राजनारायण जी चुप कराते थे। वो सब बच्चे थे उनके कि चुप हो जाओ भाई, अब जैसे मेरी माँ बैठी हुई हैं तो कहते थे कि भद्र महिला के सामने भी तुम लोग वही कर रहे हो, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ, रोकते थे। सोशलिस्ट पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के चुनाव में पुणे में 71 में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जैसे शिवानंद तिवारी पर्चा लेके पहुंचे अपना कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो बुलाए कितनी बार लड़े हो चुनाव, कितनी बार जेल गए हो, 11 बार, भाग जाओ, जब 25 बार जाना तब आना। भगा देते थे बच्चों को, तुम नहीं लड़ोगे। राजनारायण वैसे नेता थे और अपने बचपन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में चौक चौराहों पर कमला हरीगा वाह भाई वाह, संपू हरीगा वाह भाई वाह, कांग्रेस के एकाधिकारवाद से लड़ते हुए, पहले अंग्रेजों से,
कमलापत त्रिपाठी और संपूर्ण आनंद का जिक्र
जी
जी,
वो बड़े हुए थे तो उनसे, वो बेनियाबाग में जो विक्टोरिया की मूर्ति थी, योजन सभाई आके कहते थे कि नेताजी, राजनारायण जी का निक नेम नेताजी है, सारे नेताजी उसके बाद के हैं जान लीजिए। एक तो वो
सुभाष चंद्र बोस पर राजनीति में जी, हाँ, आजाद भारत,
हाँ, तो वही नाम बाद में मुलायम सिंह यादव ने, मतलब
जी।
तो फिर नेताजी मूर्ति हटानी है, तो मूर्ति हटने का जो किस्सा मैं सुनता हूँ कि राजनारायण जी गए और मूर्ति को, राजनारायण जी बहुत मोटे ताजे पहलवान थे, रोज 3 बार मालिश होती थी उनकी,
बांधे सफेद पटका और मोटे लेंस का चश्मा,
हरा उसमें मानते थे, हरे रंग का, और इलेक्शन के बाद से फिर गुलाबी बांधने लगे। तो अपना पकड़ ली विक्टोरिया की प्रतिमा और योजन सब उनके पीछे जो रेलगाड़ी के डब्बों की तरह वो नेताजी को पकड़ के लगे खींचने, और धक्का मुक्की करते हुए उन्होंने प्रतिमा तोड़ दी। पुलिस संभाल नहीं पाई, पुलिस भी बहुत सदैव थी, उसने होने दिए आंदोलन। अब लगता है ऐसा कि पुलिस के पास भी कुछ ज्यादा अख्तियार थे और कुछ ज्यादा संकोच था,
और अपने अतीत की स्मृति थी,
अतीत की
स्मृति, हर बैठन थामे मुट्ठी को ये पता था कि ये जो सड़क पर बैठे हैं, कभी वो भी सड़क पर बैठे थे या उनके अपने भी किसी सड़क पर अपने हक की मांग के लिए।
राष्ट्रीय आंदोलन की स्मृति बहुत ताजा थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अपना मोर्चा उसी पर लिखा गया है,
अपना मोर्चा वैसी ही सूरत पर लिखा गया है,
उसी तरह की एक छात्र
उसी, हाँ हाँ, उसमें जवान जो है वो धूमिल से बहुत प्रभावित है, अपना मोर्चा का जो जवान है, और वो दरअसल राजनारायण के असर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो समाजवादी विचारों का उभार आया था, जो बाद में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में और फिर विश्वविद्यालय की जड़ता के खिलाफ आंदोलन में पलटा, और पूरी उस आंदोलन का बड़ा रोल है जो 60 के दशक के अखीर में BHU में पांव जमाता है, वही आंदोलन कन्वर्ट होकर के इंदिरा गांधी के एकाधिकारवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन की मुख्य धारा बन जाता है। तो प्रतिमा तोड़ दी, और बाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इस वाली समाजवादी पार्टी की, तो मुलायम सिंह यादव ने वहां पे राजनारायण जी की प्रतिमा लगवा दी। अब
कमाल है,
प्रतिमा का विकल्प प्रतिमा ही है हमारे पास, एक प्रतिमा हटाई गई तो जो सबसे बड़ा प्रतिमा विध्वंसक था वही प्रतिमा में फिर से कैद हो गया। ये कहना मैं चाहता हूँ,
ये आपका नहीं है, ये तो बुद्ध के जमाने से है,
हाँ, ये कोई नई विडंबना
नहीं। बातचीत के पहले इतिहास की अध्येता रुचिका से बात कर रहा था और वो मुझे बता रही थी कि हमारे इस महादेश में मूर्तियां बनाने का चलन जो कनिष्क और इन सब के जमाने में आया वो बौद्ध प्रभाव से आया, और जो सबसे बड़ा भंजक है उसकी ही मूर्तियां बनाने से आया। पर यही है।
बिल्कुल यही है।
तो अब ये जो बातचीत का सिरा बनारस में अटका है, पर बनारस एक जगह नहीं अटका है, वो तो पूरी दुनिया में विचर रहा है। तो अब दिल्ली आते हैं, राजघाट आते हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्र हैं, ज़मीन पर सोने वाले, खिचड़ी खाने वाले, वर्णाश्रम को दरेरा देने वाले, और ये कहने वाले कि घराना तो सिर्फ एक है, शिव का। वो गा रहे हैं गुरु का पद। क्या पद है और क्या कहानी है, क्योंकि उसके बाद कनस्तर है, उससे झरता आटा है और एक पद्म पुरस्कार है।
आपने इतने ध्यान से पढ़ा है उस प्रसंग को, मैं क्या ही कहूँ। गा रहे हैं, सामने मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, जिन्हें छन्नूलाल जी सरदार जी कहते हैं।
अच्छा, वो पद भी तो बताइए गुरु का।
गुरु बिन कौन बतावे ज्ञान है, शायद यही वाला पद है। गा रहे हैं और वहां से एक कसम है जो छूट गई है किताब में आने से। संकट मोचन मंदिर के महंत, आईआईटी बीएचयू में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और महान पर्यावरणविद प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र ने छन्नूलाल जी से हाथ जोड़ करके और पांव पकड़ के विनती की है कि पंडित जी हुआ जाके गाना गाया तो दो गाना के बीच में भाषण मत दिया। ये कह के भेजा है उन्होंने।
क्यों ऐसा छन्नूलाल जी करते थे क्या?
अभी करते हैं, अभी निरंतर करते हैं और बहुत भयानक रसभंग वो करते हैं। वो अपने गाने के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो मानस के पद गाते हुए उसकी व्याख्या जरूर करते हैं कथावाचकों की तरह। उनको लगता है कि उससे बात बहुत बन जाती है, उससे संगीत की बहुत हानि होती है, और बहुत भर के जो है हनुमान जी की माला पहना के एक 1.25 किलो वाला लड्डू का डब्बा दे करके, वो दोनों रोज के मित्र थे। कुछ मामलों में वीरभद्र जी उनके गुरु और संगीत में छन्नूलाल जी उनके गुरु।
और 21 साल की बैठकी,
21 साल की बैठकी,
और मानस में ही सारे रागों का गायन,
मानस में सारे रागों का गायन। वो थके नयन रघुपति छवि देखे, और वो वाला प्रसंग राम सीता के विवाह वाला, जगमगात जनु खम्भन माही, मतलब कि वो,
और फुलवारी का प्रसंग।
हाँ,
कि देखा तो एक ही बार है सीता ने राम को।
तो वो सब चल रहा था साथ में, और उसी बीच वो निमंत्रण आया था 3 मूर्ति भवन में गाने का
जी,
और ये कसम दिला के उनको वहां से भेजा गया था कि
समाधि पर था।
हाँ, गांधी जी की समाधि पर। हाँ, ये कह के भेजा गया था कि भाषण मत दिया, भाषण
सुनाना। तो उसी भाषा में बताइए कैसे कहा होगा,
हाथ जोड़ के कहा होगा वीरभद्र मिश्र।
नागरी में तो, खड़ी बोली में तो नहीं ही कहा
होगा कि पंडित जी कसम हो वहां जाके गाना होना मत, भाषण वोषण मत दिए गाना के बीच में, एक शब्द बोलेगा जरूरत नहीं हो। वो जानते थे कि उसका क्या असर पड़ेगा
जी।
और जब हम लोगों ने कभी विनोद में वीरभद्र मिश्र से ये कहा कि अरे आपका बहुत रोल है, पंडित जी को पद्म पुरस्कार मिल गया, तो इस बात से बहुत विचलित होते थे, कहते थे कैसी बात आप तो कर रहे हैं, सब हनुमान जी का हो, यानी संकट मोचन महाराज जी का है।
वो भी एक बनारस है, उस परिसर में भी दाखिल होंगे, तुलसी की परंपरा का संकट मोचन मंदिर, जहाँ पर कोई वीआईपी नहीं है और कोई बैक बेंचर नहीं है, जहाँ पर 3 विद्वान आचार्य एक संगीत समारोह शुरू करते हैं, और जहाँ का महंत विज्ञान का प्रोफेसर है। पर ये जरा प्रसंग पूरा हो जाए।
तो छन्नूलाल जी का गाना सुना गया वहां पे, वहां शीला जी थी, सरदार
शीला जी,
जी
ने तो बहुत उनको प्रोत्साहन दिया।
शीला जी ने बहुत प्रोत्साहन दिया उनको, बहुत प्रोत्साहन।
शीला दीक्षित जी की बात हो रही है।
और उनके लिए
दिक्कत ये है गुरु, हम और आप तो बात करते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम ही और आप बात कर रहे हैं, बाकी किसी को समझ में आ जाए तो उसकी वो, मैं फ्लो में अपना मोर्चा बोल गया, जबकि ठहर के बोलना चाहिए था काशीनाथ सिंह जी का एक उपन्यास, तो ये हम बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, मैं माफी चाहता हूँ जी। शीला दीक्षित जी का बहुत स्नेह था।
तो तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिन्हें छन्नूलाल जी सरदार जी कहते हैं अपने ही अंदाज में, और सोनिया जी। उस दिन बहुत जम गई महफिल, बहुत अच्छा गाना बजाना हुआ, और ये तय हुआ कि पद्म पुरस्कार कोई दिया जाए इन्हें, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। तो शायद तय हुआ था पद्मश्री के लिए, लेकिन फिर लगा कि ये पद्मश्री जो है छन्नूलाल जी के अवदान और उनकी उम्र के साथ न्याय नहीं होगा, तो सीधे पद्म भूषण मिला उन्हें। पद्म भूषण मिला तो गेहूं से आटा पिसवा के लेके आ रहे थे कंधे पे, कंजूस आदमी है, पैसा बचाने के लिए करते होंगे पंडित जी मां।
अच्छा
हाँ, अपना वही छोटी गैबी नाम का छोटा सा मोहल्ला है, वहीं पर एक मंदिर है बहुत पुराना, उसका गैबेश्वर महादेव नाम है। ये सब चीजें मुझे बहुत रहस्यमय लगती हैं। बनारस में अपनी उम्र के पैदाइश से आज तक के 43 साल गंवा देने के बाद भी बनारस तमाम मामलों में बहुत रहस्यमय लगता है। तो ये बात भी वैसी ही है कि गैबेश्वर महादेव के मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको सिखा रहे हैं, कोई प्रोग्राम मिल गया तो मार दे रहे हैं। और
पर आपने, आप तो शब्दों के प्रयोग को लेकर बड़े सचेष्ट रहते हैं व्योमेश, आपने गवा देना क्यों कहा? ये कौन सा रिक्तता बोध है कि 43 बरस गवा देने के बाद
गवा देना कह दिया है? मतलब मैं समझ नहीं पाया हूं तो लगता है कि गवा दिए हैं कि गैबेश्वर महादेव, गैबेश्वर नाम जो है, मोहल्ले का नाम है छोटी गैबी और जगह का नाम है, मंदिर का नाम है गैबेश्वर। अच्छन्नू लाल जी मुझसे बता रहे हैं कि 600 साल पुराना मंदिर हो, यानी 600 साल पुराना मंदिर है, तो मैं क्या मानूं उनकी बात को, सच मानूं कि झूठ मानूं? मैं तो यही सोचता रह जाता हूं कि मैं एक पारंपरिक व्यक्ति की तरह सोचूं कि एक आधुनिक मनुष्य की तरह। और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम वाला हाल होता है कि गैबेश्वर के सामने सर झुका लूं कि उस मंदिर की जासूसी करूं कि कब हुआ था क्या हुआ था। अब बच्चन सिंह ने बहुत मन से कॉलोनी बनाई निराला निवेश, उसमें एक विकास प्राधिकरण का बगीचा है, उसमें एक मंदिर उगाया, उसका नाम है निरालेश्वर महादेव। बच्चन सिंह जी हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत बड़े अध्येता
कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी,
और उन्होंने निराला पर पहली आलोचना की किताब लिखी है क्रांतिकारी कवि निराला नाम से, निरालेश्वर महादेव। लम्ही में एक मंदिर था प्रेमचंदेश्वर महादेव, उस पे लिखा हुआ था 108 साल पुराना मंदिर, तो उस पे हम लोगों ने खैर इतना लेख पढ़
दिया। तो हो सकता है परंपरा की ये भी तो टेक हो सकती है, जिसको आप राम और माया में किसे चुनूं, ये चुनाव क्यों है कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं? बनारस भी तो एग्जिस्ट करता है।
बिल्कुल करता है, बनारस बहुत मायावी है इस मामले में, सही कह रहे हैं। अगर प्रेमचंद के साथ जो हुआ उनके जन्मस्थल लम्ही में, वो अगर न हुआ होता तो प्रेमचंदेश्वर महादेव का भी अभ्युदय न हुआ होता। जैसे वहाँ उनका जन्मदिवस ऐसे मनाया जाता, वहाँ कोई एक रिसर्च सेंटर होता जहाँ पे लोग बाहर से आते, वहाँ पे जो जनकल्याण का और विकास का काम हो रहा था उससे प्रेमचंद की कहानियों के सूत्रों को जोड़ पाने की कोई मेथोडोलॉजी हमारे पास होती।
आपने सतयुग के विचार को कुछ ज्यादा गंभीरता से और अभिधा में ले लिया है क्या?
नहीं
पर कामनाओं पर पहरेदारी क्यों ही की जाए?
हाँ ऐसा होता है, मैंने सुना है।
और बनारस वाले प्रेमचंद के मकान का क्या?
बनारस वाले मकान का तो किराया समय से नहीं देते थे, अब जो मकान मालिक थे उनकी पांचवी पीढ़ी मुझे ये बता रही है कि उसी खिड़की पर तो बैठ के निर्मला लिखते थे। अब मैं मानूं कि ना मानूं, मुझे ये पता है कि वहां रहते थे वो, और फिर कह रहा है कि किराया समय से नहीं देते थे, ये अद्भुत बात है। अच्छा इसमें तो तथ्य है
जी
कि बाद के वर्षों में प्रेमचंद जी जिस सौम्य रिहाइश में रहे एकदम आखिरी दिनों में, वो रिहाइश भारतेंदु के परिवार से उन्हें मिली थी। वो
मुंबई से लौट कर जब आए थे,
हाँ मुंबई में अपना सब कुछ गंवा के लौट के आए थे, मतलब वो सिनेमा नहीं लिख पाए, और प्रसाद जी से मिले तो प्रसाद जी ने भारतेंदु के परिवार के लोगों से, डॉक्टर मोतीचंद से कह के वो जगह दिलवाई थी, बहुत बड़ी सी, बहुत सुंदर, एकदम वीआईपी जगह थी वो। वहाँ पे वो पंखे और वाटर पंप बनाने वाली एक छोटी सी लेकिन बड़े नाम वाली कंपनी थी, टुल्लू और सिन्नी नाम की। फिर वो कंपनी धीरे धीरे सिंक कर गई
और वहाँ वो शब्द इतना मशहूर हुआ कि उस वाटर पंप को ही टुल्लू पंप कहा जाने लगा।
हाँ मतलब कोई भी वाटर पंप जो है टुल्लू हो गया और कोई भी काला पंखा सिन्नी हो गया। अब मुझे तो याद है कि कोई भी मिक्सर ग्राइंडर बूटी भी हो गया, बूटी मिक्सी भी बनाते थे वो।
महाराज कितने पुराने आदमी हैं आप मर्फी रेडियो का उदाहरण मत देने लग जाइएगा। अच्छा तो अब जब प्रेमचंद तक आ ही गए हैं तो व्योमेश मुझे उस कागज के टुकड़े के पास ले चलिए जो जमीन पर पड़ा है, जो हंस में भेजा गया था, जो नागरी प्रचारणी की दुर्दशा का एक गवाह हो सकता था, घर कागज का बयान दर्ज होता और जिस पर लिखा है पंच भगवान, और और भगवान काटकर परमेश्वर।
दोस्तों, हिंदी के सबसे बड़े संपादकों में से एक हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने सरस्वती नाम की एक महान साहित्यिक पत्रिका 1903 में शुरू की थी, और बाद के वर्षों में जब वो रिटायर हो रहे थे, संपादकी से निवृत्त हो रहे थे, उन्होंने अपना पूरा संग्रह तब की हिंदी की सबसे बड़ी संस्था नागरी पिचाणी सभा को दे दिया। संग्रह माने सरस्वती की पांडुलिपियां, रचनाकारों की रचनाएं जैसे आई थी, स्वीकृत रचनाओं की फाइल, अस्वीकृत रचनाओं की फाइल। तो भाई साहब, आप भी ध्यान दीजिएगा,
पूरा दे
वो अस्वीकृत रचनाओं की जो फाइल थी उसमें, स्वीकृत रचनाओं की माफ कीजिएगा, उसमें कहानी थी प्रेमचंद की पंच भगवान नाम की। कहानी का नाम था पंच भगवान। भगवान को गोला बना करके काट के परमेश्वर किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वो कितना रेयर डॉक्यूमेंट है, कितना रेयर दस्तावेज है हमारी आधुनिकता का, हमारे मतलब हमारे साहित्य का कितना खूबसूरत, उसके कालजयित्व का प्रमाण है वो। और जिसे पलकों पर रखना चाहिए था उसको लाल लाल गट्ठरों में बांध बांध के रखा गया, और कभी माइक्रोफिल्मिंग आदि के लिए निकाला गया, उसमें सब टूट गए कागज, जो ओरिजिनल कागज थे 100 साल पुराने, वो टूट गए। वैसा ही एक टूटा हुआ हिस्सा जो है मैंने देखा था नागरी पिचाणी सभा में, खुद देखा था। पंच परमेश्वर कटा हुआ, भगवान कटा हुआ और परमेश्वर बनाया हुआ। तो मैंने सोचा कि ये कोई कागज है, तो उन्होंने बताया कि अरे ये वही, सभा के कर्मचारियों ने बताया। अच्छा, आप देखिए, इसी समय एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब नागरी पिचाणी सभा को 50 साल पूरे हुए, उस महान हिंदी संस्था, 125 बरस पुरानी संस्था को, तो 50 साल जब पूरे हुए 1893 से 1943 में उसके सर्वे सर्वा थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो जानते थे कि आने वाला वक्त कैसा है। आज मुझे लगता है कि उन्हें पता था, उनके मन में कोई आशंका थी। उन्होंने एक कालपात्र तैयार कराया, उसमें तब तक जो हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का विवरण है। चारों तरफ सभा ने अपने घोड़े दौड़ा दिए थे 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, कि घर घर में जाओ, जो भी पांडुलिपि मिले, हस्तलेख मिले, सब कुछ ले आओ। और पूरा नॉर्थ इंडिया जो है छान डाला था अनुसंधित्सुओं ने, रिसर्चर्स ने, नागरी पिचाणी सभा के पैसे से। और वो पैसा उसे देसी राजाओं ने, छोटी छोटी रियासतों ने, हिंदी प्रेमियों ने दिया था। तो वो पूरा विवरणों को सुरक्षित ढंग से एक कालपात्र में रख के जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। शिलान्यास का जो चबूतरा है छोटा सा, मालवी जी महाराज, महामना पंडित मदन मोहन मालवी द्वारा किए गए शिलान्यास का एक चबूतरा है, उसके नीचे 15 फीट की गहराई पर। तो अब हमारे पास एक महान संस्था का पराभव हो रहा है, और कितना पराभव हुआ है ये जांचने के लिए वही कागज है जो जमीन के नीचे है, तो अगर गड्ढा खुदवा के निकाला जाए तो पता लग जाएगा। ये सब रहस्य जो है, संसार यथार्थ से बना हुआ, उसके कल पुरजों से इतना मायावी हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जब आप बनारस को समझने चलते हैं तो उसकी मायाविता की पोल खुल जाती है, बनारस की पोल धीरे धीरे खुलती है आपके सामने। आपको लगता है कि अब हो गया, बस इतना ही था, फिर एक दरवाज़ा और है, फिर एक दरवाज़ा और है। और ये तब है जब मैं आज अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार प्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कारमाइकल लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुलसी पुस्तकालय की, अभिमन्यु पुस्तकालय की बात नहीं कर रहा हूँ, वैदिक उच्चारण की परंपराओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर और सप्रे जी की बात नहीं कर रहा हूं, तब ये हाल है। तो
आप ये सब बोल रहे हैं और मुझे आप ही का लिखा एक वाक्य जिसको मैंने रेखांकित कर रखा है, इस किताब की ये खासियत भी है कि इस किताब का जो गद्य है उसमें सूक्तियों की भरमार है। मतलब या तो सूक्ति शैली का लेखन है, या एक किस्म की भावुकता और नाराजगी है, या फिर उद्दाम बनारसी भाव वाले कह कहों या किस्सों के प्रसंग हैं। देखिए ये वाक्य, सच कहने में इतनी बाधाएं थीं कि बाधाओं के बारे में बताना ही सच बताना हो गया था। आप नागरिक विचारणी पर बात कर रहे थे और मुझे ये वाक्य ध्यान आ रहा था। आप छन्नूलाल जी की बात कर रहे थे और मैं उस हारमोनियम के बारे में सोच रहा था, 2500 में खरीदी हुई, जिसको बजाकर अगर शाम के 5 बजे के बाद वाइस प्रिंसिपल की बिटिया को संगीत सिखा दिया होता तो छन्नूलाल मिश्र को अपनी नौकरी और 18 साल का मुकदमा न झेलना पड़ता।
और बनारस में वो अवमानना कि हारमोनियम चोरी का दाग माथे पर।
और जब वो लिखते हैं कि आषाढ़ में तो कोई पक्षी का घोंसला भी नहीं उजाड़ता और मेरे साले ने मुझे घर से निकाल दिया,
कितनी हिम्मत लगी होगी ऑन द रिकॉर्ड इतना कहने में। वो इंटरव्यू इंडिया टुडे की साहित्य वार्षिकी में प्रकाशित हुआ था।
और मैं गायन, जो लोग गायन में हैं वो कितना ख्याल रखते हैं इस बात का कि अम्लीयता और स्वर तंतुओं के बीच जो देवासुर संग्राम चलता है, इसीलिए गाने वाले खट्टी चीज़ों से परहेज करते हैं। और यहाँ एक लड़का है 10-12 साल का, 10 रुपये भेजे हैं पिता ने, 6-7 जनों का परिवार है आजमगढ़ में, और 15 दिन में वो ख़त्म। तो अब रोटी है, इमली का पेड़ है, उससे इमली तोड़ी जाएगी, नमक मिलाया जाएगा, चटनी बनाई जाएगी। तो अब रियाज भी करना है और इमली की चटनी के साथ रोटी भी खानी है जो कि तासीर में खट्टी है और गले को ख़राब करती है, और पर पार भी उसी से है, बिना गायन के नहीं है।
उससे सस्ता और उससे सुलभ कुछ नहीं है। छन्नूलाल जी को साइकिल चलाते हुए तो हम लोगों ने देखा है शहर में, पैजामा एक ही था उनके पास, बरसात के दिनों में वो कीचड़ से गंदा हो जाता था तो पैजामा कुछ ऊपर करके चौड़ी मोहरी वाला पैजामा, उसमें रबर बैंड लगा लेते थे कि वो नीचे न खिसके, दो दो रबर बैंड, और साइकिल से जाते थे राजघाट, पढ़ा के राजघाट से वापस लौटते थे 80 छोट बड़ी गई।
क्या हम ऐसा कृतज्ञ समाज हैं जो महानता की माला पहनाए जाने के लिए मौत या लगभग उसकी आहट का इंतजार करते हैं?
हमको मौत से कम का आघात काफी नहीं होता हमारे लिए, और मौत के बाद भी हम टाल देना चाहते लोग हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद के घर में कोई झगड़ा हुआ, प्रसाद जी को गए मित्रों 75 साल हो गए हैं, उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी,
85 बरस हो गए,
85-86 साल, और झगड़ा हुआ। कामायनी की मूल पांडुलिपि उसी परिवार में है, प्रसाद जी के एक बेटे रत्नशंकर प्रसाद, उन रत्नशंकर प्रसाद के कई बेटे, शायद 6 या 7, उन बेटों में और उन बेटों के बेटों में आपस में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। कामायनी लेकर के गुत्थम गुत्था हो करके जूतम पैजार करते हुए चेतगंज पुलिस थाने पहुंच गया पूरा परिवार। कामायनी चेतगंज थाने पहुंच गई तो फिर चेतगंज थाने के दारोगा ने समझा बुझा करके कामायनी को वापस सराय गोवर्धन सुगनी साहू के मकान पहुंचाया। हम सबको पता है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब का घर किसी भी दिन बिक सकता है, वहां बनेगा कटरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उस घर में पहले ही पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के सर्टिफिकेट्स जो है, दीवाल तर थी यानी गीली थी, उसे दीमक खा गया है, खराब हो गई हैं सब सर्टिफिकेट्स। चांदी की शहनाई थी उनके पास, चोरी हो गई, पता नहीं कौन चुरा ले गया घर में से। 100 लोगों का कुनबा है, घर में ही कोई चोर है कि हम ही लोग चोर हैं, कहा नहीं जा सकता। कबीर की माला थी, थाईलैंड के पर्यटक आए, गर्भगृह में चले गए, न जाने कैसा धुआं उन्होंने वहां जला दिया। कबीर की माला, जब धुआं हटा तो कबीरपंथी साधु वहां जो 2 रक्षा में तैनात थे वो बेहोश थे और माला गायब थी, तो कबीर की माला गायब है। सब चीजें जहां हैं जैसे हैं अपने ही हाल पे चल रही हैं। कुंवर नारायण जी की एक कविता है, लगता है एक भीषण दुर्व्यवस्था हमारी रक्षा कर रही है। तो कोई दुर्व्यवस्था जैसे बचाए हुए है बनारस को, कई बार मुझे लगता है, आखिर ये हम क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? भारत कला भवन का बनारस सेक्शन हम क्यों नहीं सजा देते? जिसका कोई सीधे सीधे उत्तराधिकारी नहीं है, जिस पूर्वज का मान लीजिए उत्तराधिकारी है, उसको घर से निकाल के आप कोई म्यूजियम बनाएंगे प्रसाद के घर में या बिस्मिल्ला खां के घर में, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो परिवार वाले कहां जाएंगे? इसकी कोई नीति नहीं है पूरे देश में। आखिर महादेवी वर्मा सृजन पीठ वहां उत्तराखंड में बनी ना, सही चलती है गलत चलती है बन गई एक चीज, प्रसाद के नाम पे कोई संस्थान नहीं है बनारस में, इसका किसी को एहसास भी नहीं है। कबीर के नाम पर एक एकेडमी बनी है मगहर में, उसकी इमारत बन के तैयार है, और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के लोगों का यह कहना है कि एक भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है उसमें, इमारत तैयार है, डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। यह है हाल, और सरकार की ओर मुखापेक्षी होकर देखने लगना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती हर समय। हमारा अपना समाज कहाँ है? हमारा समाज कहाँ है? समाज की आवाज कहाँ है? कोई सिग्नेचर कैंपेन नागरिक चाणी सभा को बचाने के लिए? नागरिक चाणी सभा अपनी मौत आप मर रही है, किसी सरकार ने आके उसको नष्ट नहीं किया है, समाज नहीं खड़ा होता उसकी लड़ाई लड़ने के लिए।
आप मुझे ये सब बता रहे हैं, 1930 के दशक की शुरुआत में प्रेमचंद ने शायद माधुरी के लिए लिखा था रामलीला से जुड़ा एक प्रसंग, जिसमें वो बता रहे हैं कलाकारों की दुर्दशा, वो बता रहे हैं कि कैसे एक तवायफ के प्रोग्राम में उनके महाकंजूस पिता सोने की अशर्फी निकाल के दे देते हैं, और अगले दिन उन कलाकारों के पास जाने को किराया नहीं होता तो दुआना भी नहीं देते हैं, प्रेमचंद देकर आते हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये, और
अपने पिता को जान जाता है बेटा जो है।
कहता है उस दिन के बाद से मैं उल्टी चाल चलने लगा, ये प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद का लिखा हुआ है।
अब जैसे एक बहुत विचित्र वाकया है, मैं जरूर आप उसे बताना चाहूंगा। रामलीला बनारस में होती है, बहुत पुरानी रामलीलाएं हैं, जो सबसे पुरानी रामलीला है जो मानस के लिखे जाने के पहले से बनारस में हो रही है, उसके पास अपने कुछ परिसर हैं रामलीला का खेल खेलने के लिए, उसके पास अपनी अयोध्या है, उसके पास अपना चित्रकूट है, अपना नंदीग्राम है, अपना किष्किंधा है, अपनी लंका है, तो उसका एक व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एक परिसर है एकदम हाईवे के किनारे, तो वहां पर लकड़ी का व्यापार है आसपास, तो लकड़ी के कारोबारियों को वो जगह किराए पे दी गई थी जी। अब साल भर में उससे मान लीजिए 5 लाख रुपए मिल जाते होंगे किराए पे। संस्कृति मंत्रालय को लगा कि ये क्या है, ये तो जगह खराब हो रही है, पुलिस लगा करके स्थानीय संस्कृति मंत्री ने उस जगह को साफ सुथरा बनवा दिया और किराएदारों से मुक्त करा दिया। रामलीला की कितनी आय की हानि हुई? 5 लाख रुपए साल की। मिला क्या? साफ सुथरा परिसर और उसमें ताला बंद है। रामलीला की फंडिंग का बजटिंग का कोई इंतजाम नहीं है किसी के पास, वो सिर्फ आस्था के तर्क से चलती आ रही हैं। अगर मैं वहां सेवा दे रहा हूं, मैं नित्य प्रति वर्ष में 40 दिन तुलसी दल की मोटी मोटी 3 मालाएं लेके स्वरूप को चढ़ाता हूं, तो मेरा बेटा भी चढ़ाएगा, उसका बेटा भी चढ़ाएगा, उसकी बेटी भी चढ़ाएगी, ऐसा होता चला आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता चला आ रहा है कि सिद्धांत पर उत्तर जीवित रहने के लिए बनारस को छोड़ दिया जाना चाहिए? जो होता चला आ रहा है वो होता चला जाएगा, शुभ कामना से काम नहीं चलेगा, उसको एक लगातार बहस में रखना होगा। इस बात की कई बार तसल्ली भी होती है कि बनारस राजनीतिक बहस के तो केंद्र में आ गया है, एक दिन ऐसा आए कि उसकी सांस्कृतिक इयत्ता भी बहस के केंद्र में आ जाए, तब मजा आए, कुछ होने लग जाए, गलत दिशा में होने लग जाए, निंदा होगी, टोका टाकी होगी, बनारस तो सांण को धक्का भी नहीं लगने देता ना, कुछ न कुछ होगा।
किन्हीं पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर के बीच कोई किशन महाराज तमाम मात्राओं को इधर उधर कर बजाने लगते हैं।
तब मुझे लगता था कि कोई बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं, उनके सब शिष्य वैसे ही खेलते हैं ताल के साथ, 6 में 8, 6 में 10, 6 में 5, 6 में 3 बजाने वाले।
आखिरी मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को राय आनंद कृष्ण से हुई बातचीत के बारे में कुछ बताएं। जहांगीर का कटोरा, भारतेंदु का पैर में पाजेब बांधना, एनी बेसेंट के अंतर विरोध, कितनी ही कहानियां हैं।
बहुत सी कहानियां हैं। एक कहानी है उसमें हुस्नाबाई वाले
जी
की, वो जो बनारस के बहुत बड़े रईस हुए राय ललन और राय छगन, तो बिल्कुल नगर के मध्य में एक मोहल्ला है कबीर चौरा। कबीर चौरा मोहल्ले में एक जगह है ललन छगन का तबेला, लोक भाषा में उसको ललन छक्कन का तबेला कहा जाता है। तो मैं बचपन से ही ये नाम कान में सुनता था और मुझे लगता था कि कोई गाय का या भैंसों का तबेला होगा। राय आनंद कृष्ण ने मुझे बताया गाय का तबेला नहीं था, वो था तवायफों का तबेला। राय ललन, राय छगन, राय आनंद कृष्ण के मुताबिक कोई व्यभिचारी नहीं थे, वो पारखी और रसिक थे। और बेशक उसे लोग तबेला कहकर पुकारता रहा होगा, वो एक बहुत बड़ा आमोद गृह था जहाँ नगर के भारत भर के रईस इकट्ठा होते थे और संगीत का, गाने बजाने का, तहजीब का लुत्फ उठाया करते थे। हुस्नाबाई उसी में थी। और आनंद कृष्ण ने मुझसे कहा हुस्ना का नाम लेने के ठीक बाद कि अब मैं तुमको कैसे समझाऊं कि हुस्ना क्या थी। और इस तुलना के लिए फिर मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कोट कर रहा हूं राय साहब को, हुस्ना माने ऐश्वर्या राय। हुस्ना का जो वजूद था, हुस्ना की उपस्थिति का जो असर था, वो ऐश्वर्या राय के समकक्ष था। ये इंटरव्यू 2009 का लिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी इंटेंसिटी हुस्ना नाम में भर देना चाहते थे राय आनंद कृष्ण। बाद में हुस्ना कलकत्ते चली गई, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन आप देखिए कि उसी ट्रेडिशन में से एक महान अभिनेत्री निकल के आती है जिसका नाम है नरगिस। नरगिस जद्दन भाई की बिटिया हैं और जद्दन बनारस की गाने बजाने वाली हैं। बिल्कुल।
और उन्हीं नरगिस के गाने में बिस्मिल्ला खां जाके शहनाई बजाते हैं, घर आया मेरा परदेस
बजाते हैं।
कहाँ है वो जहांगीर का कटोरा?
वो कटोरा है भारत कला भवन में, अभी भी है सुरक्षित। टूट गया है वो कटोरा थोड़ा बीच में से।
विष आ गया क्या उसमें?
समय का विष है लगता है। समय भी अपने आप में जहर है। समय चीजों को नष्ट करता है और चीजें गुस्सा गुस्सा कर समय को ही नष्ट कर देती हैं। तो वो चीजें तो बहुत कुछ नष्ट करके जाएंगी अगर वो नष्ट खुद होंगी तो।
मैं व्योमेश आपके इस बयान से अपनी असहमति दर्ज कराना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम वय के उस छोर पर नहीं हैं जब हम शोक राग गाएं। अभी हम इतने भी नहीं चुके हैं कि हम
क्या बात
चीज़ों को सिर्फ अतीत में याद करें, क्योंकि अभी कवि को ये प्रत्याशा है और अभिलाषा भी कि वो पेड़ होना चाहता है। आप ही लिखते हैं, मैं पेड़ का अभिनय करना चाहता रहा हूँ, पेड़ की तरह दिखना चाहना भी है मुझमें, लेकिन इतने थोड़े से समय में मैं किस किस का अभिनय करता फिरूं, खुद का, नागरिक या दो बच्चों के पिता का, बेटे या दोस्त का। मैं एक लड़की के फूटे हुए माथे का अभिनय करता हूँ जिसकी वजह से उसकी शादी में दिक्कत आएगी। एक टीबी ग्रस्त फेफड़े का भी अभिनय किया है कुछ दिनों तक, उसमें सांस फूलने लगती है, पर आखिरी में आप कागज पर गंगा लिखेंगे और सुबह उठेंगे तो एक पेड़ होगा नजर आएगा। किताब वाला में इतना ही। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा, किताबों और उनके लेखकों तक जाने की कोशिश भी, और आपके लिए इस सतरंगी, इस अनोखी, रोज बनती बिगड़ती, शाश्वत और मरणशील दुनिया में जाने के जो पासवर्ड हैं, क्या है आपका खुलजा सिमसिम, उसको भी बांचने और भांपने की कोशिश चलती रहेगी। व्योमेश जी, आप ऐसे ही सक्रिय रहें, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
बाजा कुछ ललन टॉप सुनते हैं।